नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा, नई श्रम संहिताओं में महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रदेश के वैभव सूर्यवंशी 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल। और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वह आज और कल सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3 दिवसीय सम्मेलन कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करने से लेकर रणनीति और नीतियां बनाने तक शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कट्टरपंथ, उग्रवाद, विद्रोह और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियानों में भारत ने जो सफलता हासिल की है, उसमें हमारे पुलिस बलों का साहस स्पष्ट है। श्री शाह ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और ट्रॉफी भी प्रदान की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत, सुरक्षा आयाम। बातचीत में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस सेवा में फोरेंसिक विज्ञान तथा AI के उपयोग सहित प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र से विधानसभा के सभी कार्य पेपरलेस होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक अपनी मेज पर लगे टैब से ही सवाल और पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। नेवा योजना के तहत विधान परिषद के बाद विधानसभा की कार्यवाही में भी कागज के उपयोग को समाप्त किया जा रहा है। इधर 5 दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने विधानसभा के आसपास किसी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा सत्र के मद्देनजर महागठबंधन के जीते हुए विधायक आज पटना में बैठक करेंगे। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजद के 25, कांग्रेस और वाम दलों के 10 नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इधर विधानसभा चुनाव में मिली हार पर राजद की समीक्षा बैठक जारी है। कल पूर्णिया प्रमंडल की बैठक में चुनाव के सभी प्रत्याशियों ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। जदयू ने विधानसभा चुनाव में 16 निर्वाचन क्षेत्रों में हार के कारणों की समीक्षा के लिए संबंधित जिलों से रिपोर्ट मंगाई है। समीक्षा के लिए मुख्यालय स्तर पर विधानसभा प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक 6 दिसंबर को होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के मकसद से 21 नवंबर से 4 नई श्रम संहिता को लागू कर दिया है। इन संहिता के लागू होने के साथ ही देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत रूप प्रदान किया गया है। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि नए लेबर कोड से सभी कामगारों को तय न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। आकाशवाणी समाचार पटना से विशेष बातचीत में श्री आनंद ने कहा कि नए कानून से संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
पहले तो मैं बता दूं कि ये जो चार श्रम संहिताएं लागू हुई हैं ये एक ऐतिहासिक कदम है। पहले जो न्यूनतम मजदूरी की दर थी वो कुछ चिन्हित अधिसूचित प्रतिष्ठानों में ही लागू थी, लेकिन अब सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, जो नियोजकों को मजदूरी का भुगतान समय पर और निश्चित तिथि में करना होगा। पूरे देश में न्यूनतम वेतन का एक समान आधार तय होगा। केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए फ्लोर वेज से किसी राज्य में मिनिमम वेज कम नहीं रखा जा सकता है, यह इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है।
श्री आनंद ने बताया कि नई श्रम संहिता के प्रावधानों में महिला श्रमिकों का विशेष ध्यान रखा गया है। इन प्रावधानों से महिलाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे।
श्रम संहिताएं महिलाओं को किसी भी प्रकार के काम में भाग लेने की अनुमति देती है, चाहे वो तकनीकी हो, खतरनाक या रात्रिकालीन कार्य हो, बशर्ते सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे और इसके अलावा कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय, विश्राम कक्ष और परिवहन जैसी सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई हैं, जिससे महिलाएं बिना जोखिम के काम कर सकेंगी। मातृत्व लाभ, प्रसूति अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य परिसर की कानूनी गारंटी ने उन्हें नौकरी छोड़ने या रोकने की आवश्यकता को कम किया।
श्री आनंद की इस विशेष बातचीत को आज आकाशवाणी पटना से प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा के तहत सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7:52 से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। विभाग के अनुसार इस अवधि में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। इधर अधिकतर स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखा गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 2 से 3 दिनों के बाद विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट हो सकती है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत 11 शहरों की वायु प्रदूषित रही। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अनुसार इस अवधि में पटना के समनपुरा की वायु सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया। सहकारिता मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने कहा है कि विभाग में जल्द ही 1089 पदों पर बहाली होगी। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद श्री कुमार ने बताया कि बहाली के लिए विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को 537 और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 555 पदों की रिक्तियों के बारे में जानकारी दी है। प्रदेश में रबी मौसम में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता दल गठित होगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान खाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को यह निर्देश दिए। श्री यादव ने मुख्यालय स्तर से विशेष उड़नदस्ता दल का गठन कर सभी जिलों में औचक छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पुलिस जवानों और अधिकारियों को आम लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। नागरिकों से असभ्य व्यवहार करने के मामले में पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के अधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पटना के जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार डॉ त्यागराजन SM ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल स्तरीय न्यायालय में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 12 दिसंबर तक संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा। बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दुबई में किया जाएगा। आयुष महात्रे को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं विहान मल्होत्रा उपकप्तान बनाए गए हैं। वहीं कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बिहार को 62 रन से हरा दिया। इधर बेंगलुरु में चल रही 69वीं नेशनल स्कूल हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीता है। पश्चिम चंपारण जिले के धनहा पुलिस ने 282 लीटर अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर जिले के बेतिया में नवलपुर थाना क्षेत्र में 100 वर्ष पुराने इमली का पेड़ गिरने से एक महिला और एक बकरी की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, भारी बहुमत से जिताने के लिए महिलाओं का आभार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के तूफान में भी सबसे तेज रही भारत की रफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है, हरिद्वार में 14 जनवरी 2027 से अर्ध कुंभ होंगे शुरू। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पुलिस का दावा, रीतलाल यादव ने रंगदारी से बनाई करोड़ों की संपत्ति। आज अखबार लिखता है, पीएम मोदी ने गोवा में दुनिया की सबसे ऊंची श्रीराम प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, डीएलएड में अब मनमानी फीस पर रोक, आज से शुरू होगा नामांकन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा, नई श्रम संहिताओं में महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रदेश के वैभव सूर्यवंशी 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल। और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा, अगले 2 से 3 दिनों के बाद विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।